5 दिसंबर 1961 दोपहर का समय, कांगो रिपब्लिक के एलिजाबेथ विले एयरपोर्ट की ओर जाने वाला रास्ता जय महाकाली आयो गोरखाली की जय घोष से गूंज रहा था, जब कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ने सड़क के अवरोध को हटाने का प्रयास किया तो दुश्मन ने उनके दल पर ऑटोमेटिक वीपन्स यानी स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी शुरू कर दी। कैप्टन सलारिया और उनके सैनिकों ने खुखरी और हथगोलों से आक्रमण कर 40 दुश्मनों को मार डाला और उनकी 2 कारों को नष्ट कर दिया। कैप्टन सलारिया आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी विद्रोहियों द्वारा ऑटोमेटिक मशीन गन से की गई फायरिंग से वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। खून से लथपथ होने के बावजूद वे अंत तक लड़ते रहे। अपने कप्तान को इस तरह से लड़ते हुए देखकर भारतीय टुकड़ी में जोश भर गया। अंततः दुश्मन वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह एलिजाबेथ विले में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को बचा लिया गया, पर इस संघर्ष में मात्र 26 वर्षीय कैप्टन सलारिया शहीद हो गए। असाधारण नेतृत्व और अदम्य साहस के लिए कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आइए आज कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, जो भारतीय सेना का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण पाने वाले एकमात्र संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हुए उनकी शौर्य गाथा सुनते हैं। पंजाब के शकरगढ़ गांव के पास जामवाल, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, 29 नवंबर 1935 को श्रीमती धन देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया गुरबचन सिंह सलारिया। पिता मुंशी राम ब्रिटिश भारतीय सेना के डोगरा स्क्वाड्रन में हॉडसन्स हॉर्स रेजिमेंट में थे। अपने पिताजी से उनके रेजिमेंट की बहादुरी और देश के प्रति सेवा के किस्से कहानियां नन्हा बालक गुरबचन सिंह प्रतिदिन ही सुनता था। नन्ही आंखों ने पिता की तरह सेना का हिस्सा बनने का सपना देख लिया था और ये सपना उनके साथ बड़ा हो रहा था। लेकिन बालक ने उस विभाजन की पीड़ा भी देखी जिसने न केवल मानचित्र बल्कि कई लोगों की किस्मत भी बदल के रख दी थी। उनका परिवार अपना सब कुछ छोड़कर इस ओर आ गया और गुरदासपुर जिले के गांव में बस गया। वर्ष 1948 में युवा गुरबचन ने किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर के नाम से जाना जाता है, वहां उन्हें दाखिला मिला। अगस्त 1947 में उनका तबादला किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज जालंधर कर दिया गया, जो कि अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल हिमाचल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। आगे वे एनडीए के संयुक्त सेवा विंग में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। 1956 इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लिया और अंततः 9 जून 1957 को वह घड़ी आ गई जिसका बरसों से इंतजार था। उन्हें 2nd बटालियन 3rd गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला और मार्च 1960 में 3rd बटालियन 1st गोरखा राइफल में तबादला कर दिया गया। यह उस समय की बात है जब विश्व में शीत युद्ध का माहौल बना हुआ था और विश्व के कई अलग अलग स्थानों में एंटी कॉलोनियल संघर्ष चल रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में भारतीय सैन्य दलों को यूएन ऑपरेशन से जोड़ा गया। भारत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से ही उसका कट्टर समर्थक रहा है और संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में निरंतर सैन्य सहायता प्रदान करता रहा है। जून 1960 रिपब्लिक ऑफ कांगो बेल्जियम से आजाद हुआ, परंतु जैसे ही बेल्जियन लोग वहां से पीछे हटे, एक ही महीने के अंदर कांगो गृह युद्ध की चपेट में आ गया और वहां राजनैतिक अस्थिरता व्याप्त हो गई। इस नवजात देश की एकता और अखंडता सैन्य विद्रोह एवं हिंसक अलगाववादियों के आंदोलनों के कारण टूटने और बिखरने लगी। खासकर खनिज संपन्न कटंगा प्रांत बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कांगो ने संयुक्त राष्ट्र से सैन्य सहायता के लिए अपील की। संयुक्त राष्ट्र के इस ऑपरेशन ऊनोकट में कांगो में भारत ने ब्रिगेडियर KAS राजा के कमांड में 3000 सैनिकों की ब्रिगेड को नियुक्त किया, जिसमें एक टुकड़ी 3/1 गोरखा राइफल्स की भी थी, जिसकी कमान कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया संभाल रहे थे। उनकी पलटन 3/1 गोरखा राइफल्स को एलिजाबेथ विले में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय और उसके अधिकारियों की रक्षा के लिए तैनात किया गया। 5 दिसंबर 1961 दोपहर के समय कैप्टन सलारिया 16 गोरखाओं की अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ जोखिम भरे मिशन पर निकल पड़े। एलिजाबेथ विले एयरपोर्ट, जो कि अब लुबुम्बशी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, के रास्ते को साफ करने का यह मिशन आसान नहीं था। कैप्टन सलारिया एयरफील्ड के पास विद्रोहियों द्वारा लगाए गए रोड ब्लॉक्स को हटाने जा रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक वीपन्स और हथियार वाहकों से लैस विद्रोहियों के द्वारा किए गए प्रतिरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। लगभग 150 विद्रोही वहां मौजूद थे। ये जानते हुए भी अपनी जान को खतरे में डालकर कैप्टन सलारिया ने इस काम को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। कैप्टन सलारिया द्वारा दूसरे ऑफिसर को रेडियो पर बोले गए अंतिम शब्द थे, आई एम गोइंग इन फॉर अटैक, आई एम सर्टेन आई विल विन। जय महाकाली, आयो गोरखाली का गोरखा युद्ध घोष करते हुए कैप्टन सलारिया दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़े। उन्होंने 40 विद्रोहियों को क्लोज कॉम्बैट में खुखरी से मार गिराया और दोनों हथियार बंद गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन भारत के इस शूरवीर को विद्रोहियों के ऑटोमेटिक गन फायर से दो बार गर्दन पर गोली लग गई, मगर वो पीछे नहीं हटे। खून से लथपथ हुए अंत तक लड़ते रहे और दुश्मन की हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी। बचे हुए विद्रोही अपने घायल साथियों को वहीं छोड़ भाग निकले। कैप्टन सलारिया ने मानवता के लिए अपना जीवन बलिदान किया। वे हिंसक अलगाववादियों के विरुद्ध लड़े और कांगो स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय की रक्षा की। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के सम्मान को बनाए रखने के प्रयास में मात्र 26 वर्ष की आयु में अपनी मातृभूमि से दूर दूसरे देश में शहादत दी। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की नेतृत्व क्षमता, साहस और अपने दायित्व के प्रति उनकी अडिग कर्तव्य परायणता के लिए किए गए उनके सर्वोच्च बलिदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे संयुक्त राष्ट्र संघ की पीस कीपिंग फोर्स में शामिल रहे पहले और एकमात्र परमवीर चक्र विजेता बने। उनकी निस्वार्थ सेवा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के आदर्श वाक्य शीलम परम भूषणम, चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है, को चरितार्थ करती है। एनडीए का सलारिया चौराहा उनकी अतुलनीय वीरता के प्रति एक चिरस्थायी श्रद्धांजलि है। 14वां गोरखा प्रशिक्षण केंद्र द्वारा सुबात हिमाचल प्रदेश में कैप्टन सलारिया की याद में एक स्टेडियम और उससे लगा हुआ ही एक पार्क बनाया गया। सेना की डाक सेवा ने उनके सम्मान में 5 दिसंबर 1992 को एक विशेष डाक आवरण जारी किया। 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को कौन भूल सकता है जिन्होंने अफ्रीका के कांगो में शांति के लिए लड़ते अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। उन्हें याद कर हर देशवासी का सीना गर्व से फूल जाता है। जय हिंद।